ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने इस संगम के समय पर इस विशाल महान यज्ञ की स्थापना में कुछ आत्माओं को विशेष पिलर्स के रूप में रखा है। प्यारे साकार बाबा, मम्मा, हमारी दादियां और उसमें भी विशेष दादी प्रकाशमणि जी और उनके साथ दीदी मनमोहिनी जी, उनका बहुत बहुत विशेष अहम रोल रहा है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में। आज का जो विशेष विषय है वो है हमारी प्यारी मनमोहिनी दीदी जी की जीवन की बहुत विशेष विचित्र विशेषताएं। हम सभी को जब भी कोई विशेष दिन आता है तो साकार चरित्रों की याद आती है। जैसे ही 18 जनवरी नजदीक आता है तो प्यारे ब्रह्मा बाप की विशेषताएं हम सबके स्मृति पटल पर आ जाती हैं। जैसे ही 24 जून नजदीक आता है तो प्यारी मम्मा की विशेषताएं हम सबके ध्यान पर आती हैं। ऐसे ही इस जुलाई मास के अंदर प्यारी मनमोहिनी दीदी जी की विशेषताएं, अगस्त का मास आता है तो दादी प्रकाशमणि जी की विशेषताएं, हम सब उन विशेषताओं को सुनते हैं, दोहरा भी लेते हैं। हम सबको अच्छी तरह पक्की भी हो गई है, किसी से भी मम्मा की विशेषता पूछेंगे ना तो फट से बता देंगे, बाबा की विशेषताएं पूछेंगे वो भी बता देंगे। लेकिन हमें ये विचार करना है कि हमारे सामने जो आदर्श हैं, प्यारे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां, मनमोहिनी दीदी, उनके जीवन की जो विशेषताएं थी जिनके कारण वो अनेकों के दिलों में आज भी राज कर रहे हैं, उन विशेषताओं को फॉलो करके, उनको जीवन में उतार करके हम सबको भी उनके जैसा तीव्र पुरुषार्थ, विशेष पुरुषार्थ करना है। तो आज हम दीदी जी की एक एक विशेषता को तो लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी संकल्प करेंगे, ये भी चेकिंग करेंगे कि जो दीदी के अंदर विशेषता थी वो हमारे जीवन में कैसे परिपक्व हो जाए। यही सच्ची उनके प्रति श्रद्धा है, श्रद्धांजलि है, उनके लिए प्यार है, उनको फॉलो करना है। तो दीदी जी की एक एक विशेषता को ध्यान में लाते हुए फिर जैसे कल डॉक्टर सतीश भाई ने हम सबको एक बहुत सुंदर काम दिया था ना, चेकिंग एंड चेंज। तो अपने आप को चेक करना है कि जो हमारे बड़ों में विशेषताएं थी क्या वो विशेषता मेरे जीवन में आई है। अगर नहीं आई है तो उसको मुझे कैसे अपने जीवन के अंदर उतारना है। तो प्यारे मनमोहिनी दीदी जी एक बहुत ही संपन्न धनाढ्य परिवार से संबंधित थे और बाबा के यज्ञ में जब आए तो उनकी लौकिक माताजी और छोटी बहन, उनकी लौकिक माताजी का नाम था क्वीन मदर, क्वीन मदर कहते थे यज्ञ में, और जब हम छोटे छोटे होते थे मधुबन में आते थे तो सामने ही ट्रेनिंग सेक्शन में जहां बाबा का स्मृति स्तंभ बना हुआ है वहीं पर उनका कमरा होता था, और अक्सर जो भी बहनें पास से गुजरती थी तो बड़े प्यार से वो सबको बुलाते थे और एक ही शिक्षा देते थे अच्छी तरह से, झुक झुक सिख सिख मर मर। झुकना है, सीखना है और मरना है। तो उस समय तो हमें ऐसा लगता था कि ये बुजुर्ग दादी जी जो है ना ये बस एक ही बात सुनाती है। तो जो भी पास से गुजरता था उनको एक ही बात, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो वाक्य है इसके अंदर तो संपूर्ण जीवन का सार समाया हुआ है। क्योंकि जितना हम झुकते हैं नम्रता जीवन में है, और जितना मरते हैं, मरना माना अपने पुराने संस्कारों से, पुराने चिंतन से, पुरानी आदतों से, उतना हम जीवन में सीखते जाते हैं, परिवर्तन होते जाते हैं। और दादी जी की जो छोटी बहन थी, जिनका जिक्र आज सूर्य भाई ने भी किया था, शील दादी जो बाबा के पास बैठी थी ना उस समय, वो उनकी छोटी बहन है। और बॉम्बे के अंदर जो जसलोक हॉस्पिटल है वो खास मनमोहिनी दीदी जी के संबंधियों के द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन जैसे ही दीदी यज्ञ में आई, चाहे कितनी भी संपन्नता थी, लेकिन संपूर्ण समर्पण, ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी उनके अंदर। त्याग में जीवन, सिंपल, बहुत सादगी, त्याग में जीवन, और उस संपन्नता का जीवन में थोड़ा सा भी एहसास नहीं था, पूरी तरह समर्पण भाव, जो बाबा ने कहा, तन से भी, मन से भी, धन से भी, बुद्धि से भी, बिल्कुल समर्पित। हां जी बाबा। तो हम बच्चों को भी अपने आप को ये देखना है कि जो हमारे बड़े, जिन्होंने इतना ऊंचा पुरुषार्थ किया और एकदम बाबा के समीपता का इतना अनुभव किया, तो हमारे जीवन के अंदर वो समर्पण भाव कितना है, पूरी तरह से, थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि चलाएं, अपना चिंतन करें, अपनी इच्छाओं कामनाओं के वशीभूत रहें, वो नहीं। हमें अपने दीदी दादियों को, मम्मा बाबा को फॉलो करना है, उन जैसा बनना है, तो बिल्कुल संपूर्ण समर्पण भाव। और कभी कभी बड़ी दीदी जी एक छोटे बच्चे के रूप में बाबा की उंगली पकड़ करके जब पूरे यज्ञ का चक्कर लगाती थी, तो बाबा कहते थे कि अभी तो तुम बाबा की उंगली पकड़ करके चक्कर लगा रही हो, और भविष्य में श्री कृष्ण तुम्हारी उंगली पकड़ के खेल करेगा, चक्कर लगाएगा। यानी बाबा ने इशारे इशारे में बता दिया था कि मनमोहिनी दीदी का जो रोल होगा भविष्य में, वो श्री कृष्ण की मां के रूप में होगा, पहला जन्म होगा या जो भी होगा। तो इस तरह से कितना विशेष पार्ट था दीदी जी का। और उसके साथ साथ बाबा के प्रति जो प्यार था दीदी का, वो बहुत अटल, बहुत गहराई से, जैसे रग रग में बाबा समाया हुआ था, अति स्नेह, अटूट प्यार। और उस प्यार का स्वरूप क्या दिखाई देता है जीवन के अंदर? ऐसे तो हम सब भी कहेंगे बाबा से प्यार है, साकार से प्यार है, मम्मा से प्यार है, लेकिन प्यार की निशानी है कि जिससे प्यार है वो जो चाहता है, उसका जो संकल्प है, उसी हर संकल्प में अपने आप को ढाल लेना। तो दीदी का इतना अटूट प्यार था बाबा के साथ, इसीलिए लौकिक नाम उनका था गोपी। तो जैसे मस्त गोपी थे, गोपियों का जैसे हम भागवत के अंदर सुनते हैं कि जब बाबा, जब वो मुरली सुनती थी श्री कृष्ण की, जैसे ही उनके कानों में आवाज आती थी, तो अपना जो भी काम कर रही होती थी, उनकी पूरी चेतना वहां ही पहुंच जाती थी। कोई दूध बिलो रही है, कोई भोजन बना रही है, वो सब करते करते पूरा जैसे मुरली में मस्त हो जाती थी। तो दीदी की ये विशेषता थी कि बाबा की मुरली की एकदम दीवानी, सुनते सुनते भी जैसे उसी में मस्त हो जाती थी। बहुत प्यार, अति प्यार, एक बल एक भरोसा। तो हमें अपने जीवन में देखना है कि बाबा से हमारा प्यार ऐसा अटूट है और इतना विश्वास कि बस एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा ही हर पल हमारा सहारा है और जिनका अंदर से बाबा से अटूट प्यार होता है, बाबा उन बच्चों के सब काम करता है, उनके सारे बोझ उठाता है। जितना बाबा से हम हर कर्म में, सुबह से लेकर के शाम तक हर कर्म में बाबा के साथ अपना लिंक बनाए रखें, हर कर्म में उसको जोड़ करके रखें। थोड़ी देर बैठ करके योग लगा लिया, सिर्फ वो नहीं, योगी जीवन, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले बाबा सामने दिखाई दे, अमृत वेले बाबा के प्यार की, उसके स्नेह की अनुभूति करें और दिन भर के अंदर हर कर्म में बाबा के साथ लिंक जोड़ करके रखें। हमारा कोई भी कर्म और कोई भी पल ऐसा ना हो जिसमें हम बाबा से जुदा हों। चाहे स्नान करते हैं, क्लास करते हैं, वो तो है ही बाबा के साथ मिलन बातचीत, भोजन बनाते, भोजन खाते, कहीं भी जाते हैं तो बाबा को साथ लेकर जाना है। अभी मधुबन में भी आए तो अपने अपने घर की, दुकान की, हर चीज की जिम्मेवारी दो रूपों में, जो विशेष रूप से मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम कहीं जा रहे हैं तो मैं दो संकल्प करती हूँ कि बाबा, एक तो ये पीछे सारा कारोबार आपको देखना है और दूसरा आपको मेरे साथ चलना है। तो इसलिए बाबा को प्यार माना क्या कि हर पल हम उसके साथ रहें। और बहुत सारे काम जीवन में ऐसे हैं कि जब बाबा के साथ हमारा गहरा संबंध होता है तो हमारे बहुत सारे काम बाबा अपने आप ही कर देता है जिनका हमें पता भी नहीं चलता है। तो दीदी का इतना बाबा के साथ गहरा कनेक्शन था कि जैसे हर पल सोते जागते उठते बैठते बाबा के साथ। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि देखो, अभी जैसे सूरज भाई जी भी सुना रहे थे कि अगर वो भक्तों के काम कर सकता है तो बच्चों का कोई काम अधूरा कैसे छोड़ेगा। तो एक भगत हुए हैं नामदेव, उनके जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं, सच्ची कहानियां हैं, सच्चे अनुभव हैं कि एक बार जो है वो कपड़ा जैसे बुनते थे तो उनकी पत्नी गरीबी थी घर के अंदर, लेकिन श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे, महाराष्ट्र में उसको विठल कहते हैं, विठल जी। तो उस दिन उनकी युगल ने कहा, पत्नी ने कहा कि आज जो ये तुम कपड़ा लेके जा रहे हो किसी भी भाव बिके बस दे देना, बेच देना, क्योंकि आज घर में कुछ भी नहीं है। जाते जाते उसने फिर याद दिलाया कि बड़े बुजुर्ग जो हैं वो तो फिर भी सहन कर लेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भूख सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए जिस भी भाव बिके तुम बेच देना। जब वो लेकर के गया हाट बाजार में तो वहां पर पीछे से उसको एक आवाज सुनाई दी कि वाह, कपड़ा तो बहुत अच्छा है, थोक भी अच्छी लगाई है, पर मैं तो ठंड में ठिठुर रहा हूं, मुझे दो चादर का कपड़ा दे दो। उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक बड़ा गरीब बेचारा कांप रहा था ठंड में, वस्त्र उसके तन पे नहीं था। तो उसने कहा, बाबा तुम्हें कितना कपड़ा चाहिए? वो कहता है, बस दो चादर चाहिए। तो जब वो नापा गया तो बस वो दो चादर जितना ही था, उसने वो कपड़ा उसकी झोली में डाल दिया। फिर उसके बाद उसको अपनी पत्नी के शब्द याद आने लगे कि आज बेच के जरूर आना, कुछ ना कुछ लेके आना, क्योंकि बच्चे भूखे नहीं रह पाएंगे। तो फिर एकदम उसको संकल्प आया कि जो सारी दुनिया का पालन करता है, मेरे परिवार को भी वही देख लेगा, जो उसकी, जो मेरे बाबा की इच्छा, जो मेरे, उसको बाबा भी प्यार से कह देते हैं, जो मेरे बाबा की इच्छा। और उसके बाद उसने सोचा अब घर तो कैसे जाऊं, तो एक पीपल का पेड़ था वहां उसके नीचे बैठ गया और बस गाने लगा, अपनी मस्ती में मस्त हो गया। अब भगवान जी ने सोचा कि इसने तो परिवार को मेरे हवाले छोड़ दिया है, तो वो भला कैसे छोड़ सकता था। थोड़ी देर में एक व्यक्ति आता है, उसकी झोपड़ी जो थी ना रामदेव जी की, उसको खटखटाता है तो अंदर से आवाज आती है, कौन है? तो उसने कहा कि मैं विट्ठल जी का सेवक हूं। उसने कहा बोलो क्या चाहिए? तो बड़ा हैरान हुआ कि घर में कुछ भी नहीं है पर देने की चाह दिल के अंदर फिर भी है। फिर उसके बाद जो है ना, उसने कहा कि मैं सेवक हूं, दरवाजा खोलो और कुछ ये सामान लाया हूं। तो उसने कहा किसने भेजा? तो बताया कि जो मालिक है उसका, नामदेव जी का, वही मेरा भी मालिक है, उसी ने भेजा है, ऐसे कहकर के उसने। तो सामान आता गया, सारा घर भर गया उसका, कहीं कोई जगह बाकी नहीं बची। फिर उसने कहा कि क्या आज ही सारा सामान इतना लाना था? उसने बड़ी उससे रिक्वेस्ट की पत्नी ने कि भाई बस करो, अब तो घर भर गया, बाकी का फिर कभी हो जाएगा। तो फिर देखा कि शाम हो गई, पूरे घर में सब सामान भर गया, बच्चे बड़े खुश उछल रहे हैं, कोई मिठाई खा रहा है, कोई जो है ना, क्योंकि कभी वो चीजें उनके घर में इतनी आई नहीं थी, बड़े प्रसन्न थे। तो फिर शाम हो गई, उसे एकदम ध्यान आया कि नामदेव जी तो अभी आए नहीं, तो जो आए थे ना सेवक, उनको पूछा कि वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे भजन कर रहे हैं। कहते हैं अच्छा, तो उनको भी तो बुलाना चाहिए। तो वो गई, अब दूर से ही उसने जब देखा कि उनके घर वाले आ रहे हैं, वो घबरा गया, अब जो है ना ये पूछेंगे कि क्या हुआ। लेकिन फिर उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो है ना उछलते कूदते खुशी में आ रहे हैं, तो वो समझ गया कि ये उसी की कमाल है। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि क्या सारा सामान आज ही भेजना था? कुछ तो रख लेते, फिर कभी आ जाता, ऐसे मतलब उसको समझ आ गई सारी बात। तो कहने का भाव है कि जहां अंदर का अटूट प्यार है और विश्वास है, वहां भगवान उनके सब काम समय पर अपने आप ही पूरे करते हैं। अपने आप से हमें ये पूछना है, मेरा वो दृढ़ विश्वास, मेरा वो अटूट स्नेह बाबा के साथ कितना है, जो हमारी दादियों का था, जो हमारी दीदी का था, जिन्होंने पीछे मुड़ के कुछ भी नहीं देखा, इतनी शान शौकत थी, सब कुछ था। बॉम्बे के अंदर जब दीदी जी सेवा के लिए गए तो वो पैदल जाते थे, तो उनके कुछ संबंधी वहां थे, उनको बड़ा संकोच होता था इतने बड़े घर की ये ऐसे जा रहे हैं, लेकिन उनको कभी संकल्प मात्र भी नहीं आया, क्योंकि उन्हें ये लगता था हम ईश्वरीय सेवा पर हैं। हमारी जो भी दादियां हैं उनका शुरू शुरू का जो त्याग है वो एक बल एक भरोसे पर, एक बाबा के प्यार में पूरे कुर्बान थे। तो हमें उस जिगरी स्नेह की, उस जिगरी प्यार की अनुभूति करनी है, बस मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, और इतना दृढ़ विश्वास कि बाबा हर पल मेरे साथ है। उसको जब हम करके देखेंगे तो सचमुच में देखेंगे कि बाबा हमें संकल्प करने से पहले ही हर चीज उपलब्ध करा देगा। साथ साथ दीदी जी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो नंबर वन स्टूडेंट थे। हालांकि दीदी कभी स्कूल में नहीं गए थे, लेकिन फिर भी पढ़ाई का शौक था और थोड़ा जो भी बाबा की मुरली पढ़ सकें लिख सकें वो सीखा, और दीदी जी हम देखते थे जब दादी प्रकाशमणि जी क्लास कराते थे तो दीदी हमेशा डायरी पेन लेकर के सामने बैठते थे और पॉइंट्स नोट करते थे और सिर्फ नोट ही नहीं करते थे, इतना अच्छी तरह उसका चिंतन करते थे, उसके क्वेश्चन आंसर बना लेते थे। और फिर उसके बाद जो भाई बहने मिलने आते थे ना, तो दादी जी दीदी बहुत गंभीर भी थी लेकिन बहुत रमणीक भी थी, सबको बड़ा बड़ा बहलाते थे और उनके बहलाने का जो तरीका था वो भी अलौकिक था। उस दिन की मुरली के जो प्रश्न होते थे वो प्रश्न दीदी पूछते थे पार्टी वालों से और फिर उसके उत्तर प्रश्न करते थे और उत्तर पूछते थे, तो ये चिट चैट जैसे देखो पूरी मुरली भी रिवाइज हो जाती थी प्रश्न उत्तर। और मुझे ये याद है कि पहले एक तो पोस्ट कार्ड होता है और एक इनलैंड लेटर होता था ना, नीले से रंग का वो लिफाफा होता था, उसको फोल्ड कर देते थे तो उसका बाहर का पृष्ठ तो छपा हुआ होता था और बाकी तीन पेज खाली होते थे जैसे, तो उसके ऊपर आधे के अंदर तो मुरली के प्रश्न उत्तर छपे होते थे। जब मुरली मधुबन से जाता था ना कोई लेटर, तो मुरली के प्रश्न और उसके उत्तर जो खास दीदी जी चिंतन करके निकालते थे और फिर उसके बाद जो भी समाचार होता था वो उसके अंदर लिखा होता था, तो इसलिए वो समाचार से पहले उसको पढ़ने की उत्सुकता होती थी। और अभी भी हम देखते हैं जो क्वेश्चन आंसर पहले जो मुरलियां होती थी ना आपसे 25-30 साल पहले, तो उसमें प्रश्न उत्तर नहीं आते थे, धारणा सार स्लोगन ये सब कुछ नहीं होता था, ये सब बाद में शुरू हुआ है। तो ये शुरू शुरू में दीदी जी का ही संकल्प और उनकी ही इन्वेंशन थी। तो इस तरह से पढ़ाई पे फुल अटेंशन, मुरली को इतने प्यार से इतने लगन से सुनते थे। अब दीदी तो ये सब कुछ करती थी, हम क्या करते हैं? क्या सचमुच में बाबा की मुरली को इतने महत्व से सुनते हैं? ये अपने आप को देखना है। कल तो सतीश भाई जी ने सबको पक्का कराया ही मुरली की बात, सबकी पॉकेट में होनी चाहिए। और मुरली को कितनी बार पढ़ना चाहिए? कितनी बार उन्होंने बताया ना, 8 में आना है तो कितनी बार, 108 में आना है तो कितनी बार। बार बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पूरी मुरली हम पढ़ेंगे, लेकिन कोई ना कोई बाबा की एक लाइन, धारणा, वरदान, सार हमारी कानों में गूंजता रहे। मुरली सारा दिन कानों में गूंजती रहे, उसका चिंतन चलता रहे। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे इस अलौकिक जीवन में जो सबसे बड़ा अध्ययन है, जो सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना है, जो सब वेद शास्त्रों का सार है, वो किस में है? वो बाबा की मुरली में है। और हम ये भी विशेषता देखते हैं कि हमारी बड़ी दादी थी जानकी दादी, अभी भी 4 बार मुरली पढ़ती है। अभी 7 दिसंबर 2018 को हमारा ये सौभाग्य था कि दादी जानकी जी हांसी में आए थे और वहां एक बड़ा ऑडिटोरियम बना था उसकी ओपनिंग के निमित्त, तो खास जो भाई आया 2-3 दिन पहले दादी का रूम देखने के लिए, उनका जो कमरा तैयार किया, तो उसने खास कहा कि एक सिंगल चेयर टेबल और उसके ऊपर टेबल लैंप लगाना, क्योंकि दादी जी रात को भी मुरली पढ़ती है और सुबह उठते ही भी मुरली पढ़ती है, 4 बार तो अभी भी पढ़ती है। आप विचार करो, इतनी पुरानी दादी और वो अभी तक भी 4 बार पढ़ती है। ऐसे मनमोहिनी दीदी, मुरली के प्रति इतना प्यार। और हम बच्चों को इस मुरली का अध्ययन कितना करना चाहिए, बहुत सारी चीजों में मैंने देखा। एक बार हमारे पास पंजाब जोन के जो वरिष्ठ भाई हैं हमारे, अमीरचंद भाई आए, तो सारी बहनों का परिचय पूछ रहे थे, कितने पढ़े लिखे हो, कब से ज्ञान में हो, ऐसे। तो एक बहन जो थी ना वो कम पढ़ी हुई थी, मैट्रिक से भी कम, तो उसे बताने में संकोच हो रहा था, तो थोड़ा सा मैंने इशारा दिया कि भाई जी इनकी स्टडी थोड़ी कम है। तो उसको भ्राता जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई, कहते हैं तुम बार बार मुरली पढ़ो, बार बार मुरली पढ़ो, और तुम जितनी बार मुरली पढ़ोगी ना तुम्हारी इतनी अच्छी बुद्धि हो जाएगी, सब पढ़ी लिखी बहनों से तुम आगे जा सकती हो। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें अपनी दीदी मनमोहिनी और दादियों के जीवन में देखा कि मुरली से कितना प्यार है, क्योंकि वो ज्ञान सागर की चलाई हुई मुरली है। उसमें कभी भी ये नहीं आना चाहिए मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो इतना समझदार हूं, मैंने तो एक बार पढ़ ली तो बस मुझे तो याद हो जाती है, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मुरली ज्ञान सागर की चलाई हुई है। इसलिए जितनी बार उसको पढ़ेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, उतना बुद्धि विशाल होती जाएगी। तो मनमोहिनी दीदी के जीवन से हम सबको ये सीखना है कि जैसे वो नंबर वन स्टूडेंट थी और नंबर वन टीचर थी, तो ऐसे ही हमें नंबर वन स्टूडेंट बनना है। लेकिन क्या स्टडी करना है? फालतू किताबें नहीं, फालतू चीजें नहीं, हम बार 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 किसका अध्ययन चिंतन करें? बाबा की मुरली का चिंतन करें। तो इसमें हम कहेंगे कि हमने दीदी को फॉलो किया। ऐसे ही फिर दीदी जी की बहुत बड़ी विशेषता थी कि उनके अंदर पालना का संस्कार बहुत अच्छा था, क्योंकि लौकिक में भी जैसे दीदी माता थी तो एक वो मां के स्वरूप से पालना करना, और वो पालना भी उनकी ज्ञान की पालना, फाउंडेशन एक एक की पक्की करना। दीदी जी ने कभी ज्यादा भाषण वगैरह नहीं किए, स्टेज पर ज्यादा नहीं गए, लेकिन एक एक भाई बहन को भाषणा देना, एक एक के अंदर वो बाबा के प्यार का बल भरना, वो बहुत बड़ी खूबी थी उनके अंदर, सबकी पालना, जिसके कारण दीदी नंबर वन में पुरुषार्थ में गई। अब हम बच्चे पालना कैसे कर सकते हैं? आज भी सुन रहे थे, हम सबके पूर्वज हैं, बाबा की जो मुरली का कल चिंतन सुना कि हम विधाता की संतान, मास्टर विधाता हैं, तो कितने बड़े बड़े जिम्मेवारी बाबा ने हम सबको दी है। चाहे विधाता के रूप में भी हम पालनहार हैं, चाहे पूर्वज हैं सबके, तो उस रूप में भी हम सबकी पालना करने वाले हैं। तो पालना करने वाले को अपने ऊपर क्या अटेंशन देना है, क्या अटेंशन रखना है? हमें सबकी पालना करनी है। अब कुछ भाई बहने सोचेंगे कि हम अपनी घर गृहस्थी की, अपने बच्चों की तो पालना कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा ने एक एक बच्चे के लिए ये कहा है कि आप सबके इष्ट देव हो, सबके विधाता और दाता हो। तो हम दाता कैसे बने, कैसे बने वो बताओ, किस रूप में बन सकते हम दाता और विधाता? हाँ जी, सबके प्रति शुभ भावना हो, सबके प्रति देने का भाव, ये पालना है। अब हमारे आसपास समझो बहनें तो सेंटर पे रहती हैं, समर्पित हैं, वो तो सेवा करेंगी ही, लेकिन एक एक भाई और बहन, चाहे वो अपने ऑफिस में है, चाहे वो अपनी दुकान पर है, चाहे वो अपने घर में है, तो बाबा कहते हर आत्मा को जो चाहिए वो देना, ये पालना है। अब कोई प्यासा हो और उसके सामने भोजन की थाली रखो, वो नहीं, प्यासे को पानी चाहिए, भूखे को भोजन चाहिए। तो आज चारों तरफ जो आत्माएं हैं उनको क्या चाहिए, क्या चाहिए? शांति चाहिए, शक्ति चाहिए और खुशी चाहिए। तीन चीजें तो बहुत जरूरी हैं। शांति, क्योंकि चारों तरफ का वातावरण अशांत है, खुशी चाहिए और शक्ति चाहिए। तो अगर आपके परिवार के अंदर है तो परिवार की पालना किसको कहेंगे? केवल बच्चों को भोजन बना के दे दिया, दवाई दे दी, वस्त्र दे दिया, वो नहीं। हर एक को अपने घर के वातावरण को शांतिमय बनाना है, शांति का वातावरण। हर एक को अपने घर की पालना करनी है तो उस घर का वातावरण प्रेम का बनाना है। अपने घर में सबकी पालना के लिए खुशी का माहौल बनाना है। हमारे संपर्क में जो आत्माएं आती हैं, तो देखो चारों तरफ क्या है, आज आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, उनकी सोच भी नेगेटिव, उनके बोल भी नेगेटिव, तो जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना, ये भी पालना है। कोई किसी का बिल्कुल दिल जैसे टूटा हुआ है समस्याओं से, बातों से, उनके उनको एक सहानुभूति देना, उनको शक्तिशाली चिंतन देना, ये उनकी पालना है। अगर कोई बीमार है, बड़ा दिल शिकस्त हो चुका है, निराश हो चुका है, उसके अंदर आशा की किरण जगाना, उसका संबंध बाबा से जोड़कर उसको ऊंचे सहारे के साथ जोड़ना, ये उसकी पालना है। तो दीदी जो ऐसी पालना देती थी ना, हर एक के अंदर जैसे ना उम्मीद के अंदर भी उम्मीद जगा देते थे। और दीदी का जो था ना, सबके प्रति सखी का भाव होता था कि ये मेरी सखी है। चाहे वो माताएं होती थी, चाहे वो टीचर बहनें होती थी, तो दीदी बहुत जैसे क्लोज हो जाते थे, ये मेरी सखी है। और एक बात की सावधानी भी देते थे कि सखी तो बनाओ पर सहेली मत बनाओ। ये दीदी के शब्द होते थे। क्या फर्क है इसमें, क्या फर्क है? सहेली माना बस गपशप, इधर की बात उधर की बात, पर चिंतन ये वो, तेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या रहा है, वो नहीं। सखी, जैसे श्री कृष्ण जो है ना अपनी गोपियों को सखी कहता था, सखी माना जिसका ज्ञान से मुरली से प्यार हो, मुरली का चिंतन करे, मुरली की बातें करे, केवल पॉजिटिव। तो दीदी ने हर एक को सखी बनाया, फालतू चिंतन करने वाला नहीं। तो हमें क्या करना है, क्या करना है? सबको सखा, और जैसे श्री कृष्ण के सखा भी दिखाते हैं और सखी भी दिखाते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर, उनकी बुद्धि के अंदर, उनके चिंतन के अंदर केवल श्री कृष्ण और उसकी मुरली रहती थी। कोई फालतू बातें करता था श्री कृष्ण के साथ, तेरी मेरी करता था नहीं। तो इसलिए हमें एक दूसरे के साथ जो भी बातचीत करनी है वो ज्ञान युक्त हो, युक्ति युक्त हो, किसी को आगे बढ़ाने की बातें हो, किसी के जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें हो। तो दीदी के जीवन से हम सबको ये भी पक्का करना है, ठीक है? सहेली, फ्रेंड, ये तो मेरा फास्ट फ्रेंड है। फास्ट फ्रेंड हम सबका कौन है? केवल बाबा है। और सबके साथ हमें एक आत्मिक दृष्टिकोण से, आत्मिक भाव से सबके साथ जीना और रहना है। उसके साथ साथ दीदी के जीवन की बहुत बड़ी खूबी थी कि निश्चय के आधार पर बिल्कुल निश्चिंत रहते थे। निश्चय, निश्चिंत, और बहुत निडर थी दीदी, एकदम निर्भय। क्योंकि बाबा ने जो इंटरनल कारोबार थी उसकी काफी सारी जिम्मेवारियां दीदी जी को दी हुई थी। और शुरू से क्योंकि बाबा के साथ रही, बीच बीच में दूसरे सेंटरों पर भी गए जहां तहां, लेकिन बहुत फेथफुल, बहुत वफादार थी बाबा की। और जब भी यज्ञ के अंदर कोई बड़ी समस्या आई, कोई परीक्षाएं आई, क्योंकि हमारे यज्ञ का शुरुआत का जो इतिहास है उसमें तो बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारी बातें आई है। जब इतनों ने जीवन समर्पित किया, सिंध के समाज के अंदर एक क्रांति सी हो गई, तो उस समय बहुत सारी बातें थी। तो दीदी जी को बाबा भेजते थे बातचीत करने के लिए, बड़ी निर्भय और निडर होकर के हर बातों के जवाब देती थी। चलो दो मिनट बाबा को याद कर। प्यारे बाबा हम बच्चों को एक धारणा अक्सर याद दिलाते हैं कि बालक और मालिक। दीदी के जीवन के अंदर ये एक बहुत सुंदर संतुलन था कि जब मालिक बनकर के कोई राय देनी होती थी तो वो भी देते थे, लेकिन जहां ऐसा लगता था कि औरों की राय कुछ और है तो दीदी एकदम बालक बन जाते थे। हम सबको भी अपने जीवन के अंदर बालक बनना भी बहुत जरूरी है और मालिक बनना भी बहुत जरूरी है। मालिक बनकर के बाबा की शक्तियों को, गुणों को जीवन में मालिक बनकर के, अधिकारी बनकर के भरते जाएं, लेकिन साथ साथ बालक भी बनकर के रहें। बालक माना सारे बोझ बाबा को अर्पित करना, बालक माना उसके वर्षे के पूरे अधिकारी बन करके रहना। जो बाबा का सो मेरा है, लेकिन जो मेरा है वो भी सब कुछ बाबा का है। तो ये भी एक सुंदर संतुलन था। साथ साथ दीदी जी के जीवन में लव और ला का बैलेंस, सबके प्रति बहुत स्नेही भी थे लेकिन नियम और कायदों के बहुत पक्के भी थे। अगर कोई भूल करता था तो तुरंत उसका ध्यान भी खिंचवाते थे, लेकिन साथ साथ में क्षमा भाव भी था। अगर कोई सच्चाई सफाई से अपनी गलती को स्वीकार कर लेता था तो उनको सहज भाव से क्षमा करके और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। ये बहुत बड़ी खूबी थी उनके अंदर। और दूसरी तरफ दादी जी के, दीदी मनमोहिनी के अंदर निमित्त भाव और निर्माण भाव। और हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं ना, चाहे ब्रह्मा बाबा हैं, चाहे दादी प्रकाशमणि जी हैं, चाहे दादी जानकी जी हैं, ये एक बहुत बड़ी खूबी सबके अंदर रही है और ये खूबी नंबर वन में ले जाने वाली है। हमेशा ये समझना कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, सब कुछ कराने वाला बाबा है। हम अपनी जो लौकिक जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, घर है, परिवार है, उसके अंदर भी ये भाव पक्का कर लें कि सब कुछ कराने वाला, संभालने वाला बाबा है और मैं तो निमित्त मात्र हूं, मेरा कुछ नहीं। जितना ये निमित्त भाव पक्का होगा उतने हम बिल्कुल लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे। कितनी भी बातें आएंगी लेकिन बड़े सहज भाव से उनको पार कर लेंगे, क्योंकि जो बच्चे निमित्त समझते हैं अपने आप को और सब कुछ कराने वाला बाबा है और सब कुछ बाबा का है, तो बाबा उनकी जिम्मेवारी पूरी तरह से संभालता है। इसलिए थोड़ा सा ये करके देखें हम, इसमें जरा भी ये भाव नहीं होना चाहिए कि बाबा के तो बहुत सारे बच्चे हैं और मेरी जो समस्या है पता नहीं वो भगवान तक पहुंचती भी है कि नहीं, पता नहीं वो जानता भी है कि नहीं, तो मेरी तो चिंता मुझे ही करनी पड़ेगी। बाबा ने कई बार कहा है, बच्चे सारे बोझ बाबा को अर्पण कर दो, बाबा बैठा है, तुम निश्चिंत रहो। और हमने ये महसूस किया है अपने जीवन में भी, और बहुत सारी माताओं, साधारण बोली वाली माताएं होती है ना, वो बहुत जल्दी अपनी जिम्मेवारी बाबा को सौंप देती हैं और उनके काम इतने सहज सरल हो जाते हैं जो बात मत पूछो। उनके एक एक के अनुभव सुनो ना, इतने अच्छे होते हैं कि असंभव कार्य भी संभव हो गया। सिर्फ ये बात जीवन में पक्की की कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, सब कुछ कराने वाला बाबा है। दूसरी तरफ दीदी के जीवन की बहुत बड़ी खूबी, बहुत बड़ी विशेषता, जो एक वाक्य है सबके ध्यान पर होगा कि अव्यक्त होने से पहले, 83 में मनमोहिनी दीदी जी अव्यक्त हुए, 28 जुलाई 83 में, लेकिन उससे दो तीन चार साल पहले ही दीदी जी बिल्कुल उपराम और एकदम साक्षी भाव उनके जीवन के अंदर जैसे आता गया, और जो भी मिलने आता था ना तो एक शब्द वो पक्का सबको कराते थे, अब घर जाना है। ये जो गीत बना हुआ है ना अपना, ये उसके बाद में ही बना है। दीदी जी ने सबको पक्का कराया, अब घर चलना है। हमारा ये सौभाग्य है, हम भी उस समय बहुत छोटे छोटे थे, 1980 के आसपास दीदी जी हरियाणा में चक्कर लगाया उन्होंने और हांसी में आए थे, और उस समय पर बाबा के स्थान इतने सुविधाएं नहीं होती थी, तो हमने दीदी जी के लिए गीता भवन का रेस्ट हाउस था, बहुत अच्छा बना था, तो वहां पर उनके रुकने का प्रबंध किया था। उनके साथ मिट्ठू दादी जी भी होते थे। मिट्ठू दादी जी उन 5 बहनों में से थे जिनको बाबा ने अपना सब कुछ उनके हवाले करके उनको ट्रस्टी बनाया था। तो दादी जी और साथ में कुछ पंजाब की वरिष्ठ भाई बहने थे, तो दीदी जी ने सबसे बहुत प्यार से मिले, थोड़े से ही भाई बहने होते थे उस समय, बड़े प्यार से मिले, सबसे बातचीत की, पालना की, भोजन किया, कराया ब्रह्मा भोजन जैसे। और उसके बाद जब दीदी जी जाने लगे तो मुझे वो पूरा दृश्य याद है कि दीदी की गाड़ी के चारों तरफ भाई बहने खड़े थे, और उस समय दीदी जी ने सबको यही पाठ पक्का कराया, यही शब्द उच्चारण किए थे, अब घर चलना है, अब घर चलना है। अब ये जो महावाक्य है ना, क्योंकि मम्मा ने जो शब्द उच्चारण किए, जो उनके जीवन का एक जैसे आदर्श था, स्लोगन थे उनके जीवन के, दादी प्रकाशमणि जी के, बाबा के, उनके पीछे बहुत गहरे भाव थे। बाबा के जो अंतिम शब्द थे, बच्चे निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी बनना है, उसके अंदर जैसे बाबा ने सारे ज्ञान का सार समा दिया था, ऐसे ही मम्मा जो कहती थी हुक्मी हुक्म चला रहा है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, इसके अंदर बहुत गहरी फिलॉसफी थी कि जब हम हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलेंगे तो कहीं भी हम अटकेंगे नहीं, कहीं हमारी आसक्ति नहीं होगी, एकदम स्थिति उपराम रहेगी, कहीं लगाव झुकाव वो सब कुछ नहीं होगा। मतलब उस एक शब्द के पीछे बहुत गहरी धारणा थी। ऐसी दीदी ने जो शब्द ये उच्चारण किया कि अब घर चलना है, इसके पीछे भी बहुत गुह्यता थी जो हम सबको बहुत प्रेरणा देने वाली थी। अब घर चलना है, इस बात को हम जितना पक्का करेंगे उतना क्या परिवर्तन आएगा जीवन में, और इसको हमें किस रूप में लेना है, अब घर चलना है। क्या सचमुच में ये स्मृति हमें रोज रहती है? हम बड़े लंबे चौड़े प्लान बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, ये बनाना है, ये बिजनेस करना है, इसको ऐसे बढ़ाना है, ये सेवा करनी है, ये करना है, लौकिक भी और अलौकिक भी। उन जिम्मेवारियों को संभालते हुए हम ये शब्द रोज हमारे कानों में गूंजता रहे, दीदी का ये शब्द कि अब घर चलना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई जिम्मेवारी नहीं संभालेंगे, सब कुछ करते हुए हम एकदम न्यारे रहेंगे, हल्के रहेंगे, जो आज का हमारा जो स्वमान है डबल लाइट। अब घर चलना है, जिसको ये स्मृति होगी पक्की, वो डबल लाइट रह सकता है। घर चलना है उसकी स्मृति। इस घर चलने के अंदर 2-3 चीजें अपने आप में समाई हुई हैं। जब ये ध्यान रहेगा कि अब घर चलना है, तो हमारा अटेंशन तैयारी पर होगा। चलना है तो मेरी तैयारी कितनी है, सच्ची पूंजी कितनी जमा की है। अब घर चलना है ये याद होगा तो अनासक्त भाव जीवन के अंदर आएगा, कहीं आकर्षण नहीं, कहीं आसक्ति नहीं, एकदम हल्के न्यारे प्यारे। अब घर चलना है ये याद होगा तो सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, यानी मन बुद्धि हमारी बिल्कुल लाइट रहेगी। जो फरिश्ता स्थिति है हमारी, वो सहज ही बनती जाएगी। तो इसलिए इस संकल्प को हम अच्छी तरह से हर रोज करना ही है। ये दीदी के प्रति हमारी श्रद्धा है, ये श्रद्धांजलि है उनके प्रति। हर रोज 2-3 बार ज- जरूर ये बात याद रखो कि घर चलना है। ऐसा नहीं है घर चलना याद रखेंगे तो जल्दी चले जाएंगे, हैं? जाएंगे तो उसी समय जब जाना है, लेकिन इतने उपराम इतने हल्के रहेंगे और जो हमारा पुरुषार्थ है वो भी बिल्कुल सहज हो जाएगा, लाइट, जिसको बाबा कहते बच्चे न्यारे और प्यारे रहो, बिल्कुल लाइट रहो, हल्के रहो। तो प्यारी दीदी जी की वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उसमें से कुछ दो तीन बातें भी हम पक्की कर लें। दीदी जैसा स्टूडेंट बनना है, दीदी जैसा पालना करने वाला बनना है, दीदी जैसा प्रभु प्रेम में मगन रहने वाला बनना है, दीदी जैसा न्यारा और प्यारा बनना है, तो सचमुच जीवन के अंदर जो परिवर्तन है वो सहज भी होगा और हम बिल्कुल लाइट भी रहेंगे। ओम शांति।